इस हफ्ते न्यू साउथ वेल्स के एक पायलट प्रोग्राम के तहत 250 बैन अल-अक़वामी तलबा की ऑस्ट्रेलिया वापसी हुई है। सिडनी के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, जुनूबी कोरिया, चीन और कनाडा समेत 15 ममालिक के 250 यूनिवर्सिटी तलबा अपनी तालीम दोबारा शुरू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। इनमें से 55 यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के ऐसे तलबा हैं जो वबाई मर्ज के आगाज में सरहदें बंद होने के बाद से ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं आ सके थे। इन बैन अल-अक़वामी तलबा ने वबाई अमराज के दौरान मुल्क की सरहदें बंद होने के बाद ऑस्ट्रेलियन कैंपस से अलग होकर 2 साल गुजारे हैं। न्यू साउथ वेल्स हुकूमत के बैन अल-अक़वामी तलबा की आमद के पायलट प्लान के एक हिस्से के तौर पर तलबा का 6 दिसंबर की सुबह सिंगापुर से सिडनी पहुंचा। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर 150,000 बैन अल-अक़वामी तलबा को खुशामदीद कहने के लिए 1 दिसंबर से सफरी पाबंदियां हटाने का ऐलान किया था, मगर ओमिक्रॉन के केसेस आने के बाद बैन अल-अक़वामी तलबा की वापसी की तारीख में 15 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। SBS न्यूज से बात करते हुए हांगकांग से वापस लौटने वाले लेस्टर और जैकुलिन का कहना था कि वो अपनी तालीम की तकमील के लिए अब ऑस्ट्रेलिया वापस पहुंच सके हैं और ये बात अब उनके लिए काबिल इत्मीनान है कि उनका तालीमी साल जाये होने से बच गया। न्यू साउथ वेल्स हुकूमत के पायलट प्रोग्राम के तहत दूसरी परवाज, जिसमें जनूबी एशिया के तलबा शामिल हैं, इस माह के आखिर में सिडनी पहुंचने वाली है। इससे पहले 5 दिसंबर को न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया ने ऐलान किया था कि वो ओमिक्रॉन के 0 केसेस की हिकमत अमली नहीं अपनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि रियासत और इलाके के रहनुमाओं को कोविड की नई अकसाम के लिए तैयार रहते हुए आगे बढ़ते रहने की पॉलिसी की जरूरत है।
And have been waiting for some more of the evidence to come in on Omicron. But, you know, we're going into 2022 looking through the front windscreen, not through the rear vision mirror. You know, we're going to make decisions about what's coming ahead, not what's gone before. And this virus has been changing over the entire course of this pandemic, and we've been making sensible, balanced, evidence-based decisions.
वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि मुल्क में इस हफ्ते के आखिर तक दोहरी खुराक की वैक्सीनेशन की शरह 90% तक पहुंचने का इम्कान है।
By the end of this week, we'll be knocking on the door, if not having walking through it, on 90% double dose vaccination rates all around the country, and that's an extraordinary achievement by Australians. Ultimately, these are decisions for premiers at the end of the day on public health of that nature. All I know is, of course, that the Doherty scientific analysis that was done showed very clearly that once you get past 80%, then it is a real game changer once you hit that. And we've seen that in New South Wales, we've seen it in Victoria, we've seen it in the ACT. These states living confidently with the virus.
मुकम्मल वैक्सीन शुदा स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स और दीगर अहल वीज़ा होल्डर्स 15 दिसंबर से सफरी इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत के बगैर ऑस्ट्रेलिया आ सकेंगे। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के बयान के मुताबिक जामियात इन गैर मुल्की तलबा के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के इंतजाम करती रहेगी जो सिडनी वापस नहीं आ सके। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के सदर और वाइस चांसलर प्रोफेसर एन जैकब्स ने कहा कि वो अपने बैन अल-अक़वामी दोस्तों को खुशामदीद कहते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के मिचल इंस्टीट्यूट के तालीमी पॉलिसी के माहिर डॉक्टर पीटर हर्ली ने ABC को बताया कि अगला साल यूनिवर्सिटियों के लिए और भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो बुहरान से निकलने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। डॉक्टर हर्ली का कहना था कि पिछले साल तकरीबन 60,000 से 80,000 बैन अल-अक़वामी तलबा की कमी हुई थी। अगला साल यूनिवर्सिटी के लिए उनके बकौल और मुश्किल होने वाला है। नए बैन अल-अक़वामी वीज़ों की तादाद में ड्रामाई तौर पर कमी आई है। इस साल जून में तकरीबन 5,000 वीज़े जारी किए गए थे, जबकि 2 साल कबल इसी महीने में वीजों की तादाद 30,000 थी। डॉक्टर हर्ली ने कहा है कि नए बैन अल-अक़वामी तलबा के लिए वीजों की तादाद वबाई अमराज से पहले की सतह से तकरीबन 70-80% कम है, मगर इस तमाम गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की तमाम रियासतों की नजरें न्यू साउथ वेल्स के इस पायलट प्रोजेक्ट पर लगी हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जहां केसेस की तादाद कम और सरहदी बंदिश सख्त रही है, वहां के प्रीमियर मार्क मैकगुविन ने भी इंटरनेशनल मुसाफरों और बैन अल-अक़वामी तलबा और तालबात के लिए सरहद खोलने के प्रोग्राम के लिए एक बड़ी मुख्तस की है। उनका कहना है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 90% वैक्सीन की शरह पहुंचने के बाद सरहदी बंदिश नरम कर दी जाएगी। दूसरी तरफ क्वींसलैंड की हुकूमत ने 13 दिसंबर से मुकम्मल वैक्सीन शुदा मुसाफरों के लिए सरहदें दोबारा खोलने का ऐलान किया है। इस तरह हॉटस्पॉट के वैक्सीनेटेड अफराद भी पीर 13 दिसंबर सुबह 1 बजे से क्वींसलैंड में दाखिल हो सकेंगे। इन अफराद को हवाई जहाज या कार के जरिए रियासत का सफर करने से पहले पिछले 72 घंटों में मनफी टेस्ट का नतीजा फराहम करना होगा और आमद के 5वें दिन दोबारा टेस्ट भी कराना होगा। क्वींसलैंड की इस سرحد پہلے اعلان شدہ تاریخ سے چار دن پہلے کھل رہی ہے۔ کوئنز لینڈ کی پریمیئر اینستیشیا پائلشے کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اس اعلان سے لوگوں کو آگے کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد ملے گی۔
You must have a negative COVID test in the previous 72 hours. So please, you know, got this date now so you can go and start organizing that test. And no quarantine is required if you are fully vaccinated. If you are not fully vaccinated, you must arrive by air only and hotel quarantine for 14 days.
کوئنزلینڈ کی پریمیئر نے بتایا کہ ریاست اس ہفتے دوہری خوراک کی ویکسینیشن کے لیے 80% ہدف کی طرف بڑھ رہی ہے۔
Our goal was to get to 80% a double dose to get as many Queenslanders as we could vaccinated before the borders open, because we know how important it is to reunite families, especially coming up to this really special of time of year of Christmas. And I know people have said to me personally, some of them haven't seen their grandkids for the first time. Some of them haven't seen their aunts and uncles, their mothers and fathers. This is going to be a very, very special time of the year. And as a government, we've been very conscious of how important this is to reunite families.
New South Wales ki chief health officer Dr. Carrie Chant ne khadsha zahir kiya hai ki Omicron cases ki tadad aur badh sakti hai.
We're continuing to investigate the outbreak of COVID cases associated with the Omicron variant at the Regent's Park Christian School, the Sydney Indoor Climbing Gym in Villawood, and the St. Peter Chanel Catholic Primary School in Regent's Park. There are 14 cases confirmed as being of the Omicron variant linked to these venues.
دوسری طرف ناردرن ٹیریٹری کی وزیر صحت نتاشا فائلز کا کہنا ہے کہ کیتھرین ہسپتال کے دورے کے دوران ایک لڑکی کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔
We wish her a speedy recovery and it does perhaps give us some indication to that positive wastewater that we kept seeing in the Bicentennial Road catchment. She went to Katherine Hospital yesterday for some treatment, and it was at that point she received a PCR test, and that test has come back positive. She has 7 household contacts, and they're all being interviewed as we speak this morning.
ساؤتھ آسٹریلیا کے پریمیئر اسٹیون مارشل کا کہنا ہے کہ جنوبی آسٹریلیا کی سرحدی پابندیوں میں کسی قسم کی تبدیلی کا انحصار اومیکرون کے بارے میں مزید معلومات اکٹھا کرنے پر ہوگا۔
So there are 3 things that we're concerned about with this new variant, which was only declared a variant of concern by the World Health Organization, I think, 9 days ago. The first thing is the transmissibility, and we are getting information to show that this is highly transmissible. The second is what the effectiveness of the existing vaccines are, and we do not have information. We're still days away from getting that information. And the third thing is the severity of the symptoms. Now, there is some anecdotal information that suggests in the early days that there is actually a lower level of severity for the symptoms of this. So we need to take all of those things into account.
ایس بی ایس نیوز کی آریانا لوچنتاڑے کے فیچر کو ایس بی ایس اردو کے لیے ریحان الوی نے پیش کیا۔